नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्षों में दोगुना होकर 2,10,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हुआ। जाने माने हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध अनुपालना नहीं करने वाले 357 वेबसाइट बंद की। दक्षिण पश्चिम नाइजर में एक मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले में 44 लोगों की मौत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों नितेश कुमार, कृष्णा नागर और मनीषा रामदास ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,10,000 करोड़ डॉलर था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस मामले में भारत अब अमरीका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से आग्रह किया है कि नए विचारों और नवाचार को अपनाते समय समाज और देश की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। अहमदाबाद में आज दूसरे वेजलपुर स्टार्टअप महोत्सव में श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका प्रमुख है। उद्योग मंत्री ने देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए वैकल्पिक निवेश कोष फंड ऑफ फंड्स जैसी मोदी सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया।
फंड ऑफ फंड शुरू किया था, पहला 10,000 करोड़ पूरा फंड हो चुका है, अब सेकंड फंड ऑफ फंड लॉन्च किया। इसी बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसकी पहली किश्त जो अभी बजट पास हुआ है उसमें पहली किश्त भी डिपार्टमेंट को मिल चुकी है। और इस फंड ऑफ फंड से हम और ज्यादा नए स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त आयोग ने अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने चेन्नई में चेन्नई सिटीजन फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के पहलुओं को भी देखा जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अमरीका की शुल्क नीति जैसी बाहरी चुनौतियां भी हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध, चीन, व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव समेत कई मुद्दों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि 109 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को भी महत्व दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत 764 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई लाभार्थियों में 176 एमएसएमई शामिल हैं। पिछले साल नवंबर तक लगभग 1.61 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश दर्ज किया गया है। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 सालों से साहित्य लेखन में लगे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से माने जाते हैं। श्री शुक्ल की कविताएं भी बहुत लोकप्रिय हुई हैं। साथ ही उनके कहानियों का संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी चर्चा में रहा है। श्री शुक्ल ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि ये पुरस्कार उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है।
ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। मेरी जिंदगी में ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। मैं उसको महसूस करता हूँ। अच्छा तो लगता है, खुश होता हूँ। बड़ी उथल पुथल है महसूस करना कि ये पुरस्कार कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी है। माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग के अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट को बंद कर दिया है। महानिदेशालय ने विदेशों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही तेज कर दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग में देशी और विदेशी कंपनियां शामिल हैं। सट्टेबाजी और जुआ से जुड़ी लगभग 700 विदेशी कंपनियां महानिदेशालय की नजर में हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये कंपनियां जीएसटी के संदर्भ में पंजीकरण, कर भुगतान करने और कर नियमों का पालन करने में विफल रही हैं। सरकार ने आम जनता को सतर्क रहने तथा विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ न जुड़ने की सलाह दी है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जनसंख्या एकमात्र मानदंड अपनाने के लिए आगाह किया है। चेन्नई में आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन पर बुलाई गई पहली संयुक्त कार्यवाही समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री पटनायक ने बताया कि केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित ओडिशा ने सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू किया है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर परिसीमन के लिए 2026 की अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों के आधार बनाया गया तो ओडिशा को लोकसभा और विधानसभा दोनों में सीटों का नुकसान होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ. वी नारायणन ने कहा है कि संगठन किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने और वहां से सुरक्षित वापस लाने के अभियान पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का वर्ष 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो अध्यक्ष ने जालंधर में लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय की 8वीं छात्र संसद को संबोधित किया। विस्तृत जानकारी हमारे संवाददाता से।
डॉक्टर नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भारतीय को चांद पर ले जाने और उसे सुरक्षित वापस लाने के मिशन पर काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और इसरो 2040 तक यह कार्य पूरा कर लेगा।
वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। वी आर गोइंग टू सेंड अ मार्स लैंडर मिशन। वी आर गोइंग टू हैव अ ऑर्बिटर फॉर स्टडीइंग द वीनस प्लैनेट।
ये अंतरिक्ष कार्यक्रम की विनम्र लेकिन प्रेरणादायक यात्रा के बारे में भी बात की जिसमें कई उपलब्धियां शामिल हैं। मंगल ग्रह मिशन को अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक पूरा करना और वह भी एक रॉकेट के उपयोग के साथ ऐसी ही उपलब्धि है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की अंतरिक्ष से 9 महीने के बाद सुरक्षित वापसी पर डॉक्टर नारायणन ने कहा कि वे उस दिन सोए नहीं क्योंकि वे पूरे मिशन को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने मिशन की सफलता के लिए दूसरों से भी सीखना चाहिए। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का प्रतिनिधि मंडल आज से इम्फाल दौरे पर है। न्यायमूर्ति गवई राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इम्फाल पहुंचने के तुरंत बाद ये प्रतिनिधिमंडल चूड़ा चांदपुर की यात्रा पर गया। प्रतिनिधिमंडल ने आंतरिक विस्थापित लोगों के तुईबोंग में सद्भावना मंडप राहत शिविर का जायजा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हाल में नागपुर में हुई हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई घटना के लिए जिम्मेदार दंगाइयों से की जाएगी। श्री फडणवीस ने नागपुर हिंसा के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीड़ितों को मुआवजा अगले 2 से 4 दिन में दे दिया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। नाइजर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक मस्जिद में हुए हमले में 44 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। नाइजर के रक्षा मंत्री ने बताया कि कोकोराउ के फोमोबित गांव में कल दोपहर की नमाज के बाद ये हमला हुआ। पश्चिम अफ्रीका का ये क्षेत्र अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादी विद्रोही का केंद्र है। सरकार ने इस्लामिक स्टेट से संबद्ध एक संगठन को इन हमलों के लिए जिम्मेदार बताया है। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के 18वें संस्करण के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 6 विकेट पर 151 रन बना लिए हैं। आज बेंगलुरु में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का उद्घाटन रंगारंग समारोह के साथ हुआ।
18वें आईपीएल क्रिकेट का आज शाम रंगारंग उद्घाटन कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ। समारोह में शाहरुख खान, दिशा पाटनी, गायिका श्रेया घोषाल और पंजाबी गायक करण औजला सहित कई सितारों ने अपनी प्रस्तुति दी। टूर्नामेंट में 10 टीमें 65 दिनों में 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। इस बीच बीसीसीआई ने प्रतियोगिता के नियमों में 4 बड़े बदलाव किए हैं। इस बार गेंदबाजों को गेंद चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शाम के मैच में ओस से निपटने के लिए बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास 11वें ओवर में गेंद बदलने का विकल्प होगा। इस सत्र में नई आचार संहिता भी लागू हो रही है। इसमें डिमेरिट पॉइंट सिस्टम और निलंबन पॉइंट सिस्टम शामिल किए गए हैं। डीआरएस का विस्तार किया गया है। अब इसका इस्तेमाल ऊंचाई वाले नो बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल के लिए किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार।
दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन बैडमिंटन में नितेश कुमार, कृष्णा नागर, मनीषा रामदास और संजीव कुमार ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में तमिलनाडु पहले, हरियाणा दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 10 वर्ष में दोगुना होकर 2,10,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हुआ। जाने माने हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट बंद की। दक्षिण पश्चिम नाइजर में एक मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले में 44 लोगों की मौत। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों नितेश कुमार, कृष्णा नागर और मनीषा रामदास ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।